ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है आज का, कल से भी जुड़ा हुआ और हमारे संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ। बाबा इस सृष्टि पर सबसे महान ऋषि, सभी शक्तियों और सिद्धियों के स्वामी थे। मैं उनको इस दृष्टि से देखता रहा था। 68 में मैं बाबा के पास आया था पहली बार। मैं बाबा को इस दृष्टि से देखता था कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान आत्मा चारों युगों में वही थे, हैं। ये सब तो बोलना पड़ता है, आप सब भी इस बात से अवश्य सहमत होंगे। भगवान ने जब यूनिवर्सिटी खोली उसमें पहला नंबर किसको मिला गोल्ड मेडल? ब्रह्मा बाबा को। तो परमात्म विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट पहला नंबर प्राप्त करने वाले, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने वाले, हम सभी के पिता, सबसे महान ऋषि, महान कर्म योगी। ये केवल उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण महिमा में नहीं कर रहा हूं, यही सत्य है। कर्म योगी अगर कोई सृष्टि पर सबसे पहले हुए तो वो ब्रह्मा बाबा। गीता में कर्म योग का वर्णन है, केवल गीता में, और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। उसकी व्याख्या करने वालों ने कर्म योग को केवल इतना मान लिया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म योगी बनना है, परंतु ये कर्म योग की अधूरी परिभाषा रही। निष्काम भाव से परमात्म स्वरूप पर स्थिर होकर कर्म करना, ये कर्म योग है। यद्यपि गीता के श्लोकों में ये बात आई है, लेकिन कोई भी उस बात को पकड़ नहीं पाया। हे अर्जुन, बुद्धि को मेरे स्वरूप पर स्थिर करके फिर कर्म कर, ये योग की संपूर्ण परिभाषा है। हम भी अपनी बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर स्थिर करके कर्म करते हैं, ये हमारी कर्म योग स्थिति है। बाबा ने हम सभी को विमान स्थिति प्रैक्टिकल में करके दिखाई। आपने सुना आज सवेरे दादी जानकी बाबा की चार पांच उन महंताओं का वर्णन कर रही थी। थोड़े में किया उन्होंने एक ही बार, सबसे महान त्यागी, सबसे महान तपस्वी, सबसे बड़े सेवाधारी, सबसे अधिक क्षमाशील, पितृत्व और मातृत्व की फीलिंग देने वाली आत्मा। केवल कहने के लिए प्रजापिता नहीं थे, सच्चे अर्थों में पिता थे, माता थे। हमें सोचना है जिनके माता पिता इतने महान हों उन्हें कैसा होना चाहिए। मैं सभी के सामने एक संकल्प और रख देता हूँ, इस क्लास की चर्चा के साथ हम सभी के जीवन में जब हम सवेरे आंख खोलते हैं उसके बाद के पहले 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सार रूप में इतना ध्यान रखेंगे, जैसा हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हों वैसे ही संकल्प सवेरे उठकर करें, जैसा हम अपना दिन देखना चाहते हों वैसे ही संकल्प सवेरे उठकर करें। बाबा ने अभी 31 दिसंबर की मुरली में ही बहुत अच्छी बात कही, सवेरे उठकर याद करो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। करके देखेंगे सभी, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना दें। संकल्पों का क्या इफेक्ट होता है जीवन पर, खुद अपने अनुभवों में इसको ले आए। सवेरे जो संकल्प हम करते हैं वो किस तरह हमारी दिनचर्या पर और हमारे पूरे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, इसके प्रयोग हमें करने हैं। बहुत सहज विधि है ये। तो सवेरे उठते ही हम सोचेंगे, जिसका बाप ब्रह्मा जैसा हो, जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता हो, जिसका बाप सर्वश्रेष्ठ ऋषि रहा हो, जो इस संसार में सबसे पहले कर्मातीत और फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त हुए हों, उनके बच्चों को कैसा होना चाहिए। सवेरे का ये थोड़ा सा भी चिंतन हमारे जीवन की धारा को बदलने वाला हो जाएगा। सभी इस छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दें, हमारे अपने ही संकल्प हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जीवन परिवर्तन लंबी चौड़ी बात नहीं, केवल संकल्प परिवर्तन है। ये छोटा सा फॉर्मूला आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ ले जा सकते हैं। बाबा हमारे सामने कर्म योग का और परिचय स्वरूप का सबसे सुंदर उदाहरण है। बाबा को जिस रूप में मैंने देखा इस जीवन में, बाबा को केवल आंखों से देखने की बात नहीं होती। आप शायद सोचते होंगे सभी भाई बहने कि हमने बाबा को नहीं देखा तो हम उनके बारे में कैसे क्या जान सकते हैं। केवल आंखों से देखकर कोई किसी को नहीं जान सकता। जानने के लिए चाहिए दिव्य विवेक, बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि, दूसरों की मान्यताओं को पहचानने का विवेक चाहिए। चाहे आपने उन्हें साकार रूप में नहीं देखा, परंतु उनकी सभी झलकियां, उनका संपूर्ण चरित्र हम सबके सामने स्पष्ट है। सोचने की बात है, जो सबसे पहले कर्मातीत हुए हों उनकी स्थिति कितनी सुंदर रही होगी। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह साधनाओं में तपस्या में तपाया होगा। मुझे याद रहता है एक सीन, जब हम पहली बार मधुबन में आए थे तो बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे थे। वो झोपड़ी आज आप देखते हैं, वो झोपड़ी ऐसी नहीं थी, वो खजूर के पत्तों से बनी हुई होती थी, बिल्कुल साधारण। खजूर के पत्ते की दीवारें खड़ी हुई, ऊपर भी खजूर के पत्ते और अंगूरों की बेल से ढका हुआ सारा बगीचा। मेरा ये अनुभव मुझे बहुत याद रहता है। ऐसा लगता था, हमें पता लगा, हम छोटे थे, हमने सुना कि बाबा झोपड़ी में बैठे हैं। हम झोपड़ी की तरफ देखते थे, जाने की तो हिम्मत नहीं होती थी, हम छोटे भी थे, डरते थे, लेकिन ऐसा लगता था झोपड़ी से चारों ओर शांति की बहुत गहरी लहरें फैल रही हों, जैसे वाइब्रेट कर रही हो झोपड़ी शांति की तरंगों को। वो बाबा का अंतिम वर्ष था इस धरा पर, महान तपस्या, बाबा का अंतिम साल निरंतर योगयुक्त स्थिति में बीता था। मुझे बाबा के नशे की बहुत बातें याद रहती हैं। मैं जब समर्पित हुआ तो वो सब चीजें बहुत फ्रेश थी, उन्होंने बहुत मदद की। आखिरी दिन की आखिरी बात आपको सुनाता हूँ। बाबा को छाती में थोड़ा सा दर्द था। आपने सुना होगा 18 जनवरी को सवेरे बाबा क्लास में नहीं आए थे। भाइयों ने बाबा को कहा, किसी भाई ने जो मुख्य भाई थे, कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है, डॉक्टर को बुलाएं। बाबा अपनी इस धरा पर अंतिम दिन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे डॉक्टर क्या करेगा, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है। संपूर्ण प्रकृति को जीतने वाले, शरीर के किसी भी कष्ट से ऊपर रहने वाली ये महानात्माएं इस सृष्टि के लिए सचमुच ही बहुत बड़ा श्रृंगार थी, शोभा थी। ऐसे बाप के हम सब बच्चे हैं, हमें भी उनकी तरह ही कर्म योगी बनना है और फरिश्ता बनना है। हम सोचें, क्या फरिश्ता बनने के लिए हमारे पास कोई प्लान है, या केवल हम कहते हैं हमें फरिश्ता बनना है। सभी अपने पर दृष्टि डालेंगे, हम कहते हैं हमें कर्मातीत होना है, या सचमुच हम चाहते हैं कर्मातीत होना। मैं यदि हाथ उठवाऊं तो शायद ही कोई आत्मा ऐसी हो जो सच्चे दिल से चाहती हो मुझे कर्मातीत होना है, फरिश्ता बनना है। ये मंजिल सचमुच बहुत ऊंची है। जब तक हम इसके लिए कोई सुंदर प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक ये मंजिल हमारे लिए बहुत दूर की मंजिल रह जाएगी। सोचने की बात है, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, मैं सोचा करता था पहले नंबर की आत्मा को कर्मातीत होने में 33 साल तपस्या करनी पड़ी, गहन तपस्या, व्यर्थ से सदा सदा मुक्त आत्मा, सर्वश्रेष्ठ त्यागी, जिसने त्याग के बाद पैसे को देखा नहीं, जिसको अपने त्याग की कोई आभास नहीं था कि मैंने कुछ छोड़ा, जो ये कहते थे तो कोई थी पत्थर पे छोड़ दी, क्या छोड़ा, हीरे मिल रहे हैं, सोने की दुनिया मिल रही है, स्वयं भगवान मिल गया, जिसे अपने त्याग का आभास भी नहीं था, ऐसे महान त्यागी और सर्वश्रेष्ठ ऋषि को कर्मातीत होने में 33 वर्ष लगे, तो हमें क्या करना चाहिए। विचारणीय बात है, स्वचिंतन का विषय है, किसी के कहने से नहीं होगा, स्वयं को स्वयं कुछ कहना होगा। हम सभी बाबा से सीखते हैं, आप लोगों में से बहुतों ने बाबा की कहानियां सुनी होंगी। बाबा निरंकारिता की तो चेतन प्रतिमा थे, बाबा के चलने से, बोलने से, देखने से, व्यवहार से किसी को तनिक भी अहंकार की कोई फीलिंग नहीं होती थी, संपूर्ण निरंकारिता। हर कार्य करते थे, अगर गेहूं चुने जा रहे हैं तो बाबा भी बैठे हैं थाली लेकर, देखने वाले सोचेंगे ये ब्रह्मा सृष्टि को नया बनाने वाला गेहूं बीन रहा है, सोच भी कोई नहीं सकता। कर्मयोग का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण। तो हम पहली बात याद रखेंगे, मैं आपको कर्मयोगी बनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स सूत्र बता देता हूँ। पहले तो हमें अपने पास ये स्लोगन लिख लेना है, बिना कर्म योगी बने कोई भी कर्मातीत नहीं हो सकता, और बिना कर्मेंद्रिय जीत बने कोई कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म योगी बनने के लिए कर्म के प्रभाव से भी परे होना पड़ता है, जिसको बाबा ने कहा है कर्म कॉन्शियसनेस। बड़ी नेचुरल बात है, मनुष्य जो कर्म करता है उसकी कॉन्शियस, उसकी फीलिंग, उसकी स्मृति, उसका प्रभाव उसके ऊपर रहता है। लेकिन योगी वो, बुद्धिमान वो, जो अपने को कर्म की फीलिंग से ऊपर उठा ले। चलेंगे अभी सभी एक फीलिंग में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और ऊपर से सनातन शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। सभी कर्म कॉन्शियस न होकर थोड़ा ध्यान देकर प्रैक्टिस करेंगे कर्म के प्रभाव से ऊपर रह कर कर्म करने की, या अपने जीवन में बुद्धिमानी की दो डेफिनेशंस रखता आया हूँ, तब भी उसको अपने जीवन का एक स्वरूप बना सकते हैं। बुद्धिमान वो जो अपने चित्त को शांत रखना सीख लें, उसका मन बहुत भटकता है। गुलजार दादी सुना रही थी, आप सभी ने सुना है, क्या क्यों में भटकता है ये मन। सच्ची दिव्य बुद्धिमानी, दिव्य विवेक वही है जो अपने चित्त को शांत रखना सीख ले। अगर ऐसा विवेक नहीं है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि मनुष्य के लिए समस्याओं का, उलझनों का कारण बन जाती है। आज संसार में बहुत बुद्धिमान लोग बहुत उलझे हुए हैं। अभी अभी मैं अपनी एक यात्रा में एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, वह एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। बहुत बड़ा आदमी मेरे सामने बैठ कर रो गया, अपने जीवन से बहुत दुखी, जिसकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, अपने घर ले गया, जिसका रहने का मकान भी एक महल है, लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं, नींद नहीं। बुद्धिमानी, अति अधिक बुद्धिमानी अहंकार में मनुष्य को ले जाती है और जो मनुष्य की परेशानियों को बढ़ा देता है। दूसरी बुद्धिमानी की परिभाषा है, बुद्धिमान वो है, सबसे बड़ी परिभाषा, जो अपनी बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर स्थिर कर दे। कर्म योग के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, हाथ से कर्म करें और बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहे। बुद्धि परमात्म शक्तियों को ग्रहण करती रहे, ईश्वरीय शक्तियां, उसकी एनर्जी हम में प्रवेश करती रहे और हम हाथों से कर्म करते रहे। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। वैसे तो मनुष्य सोचता है कि एक ही साथ बुद्धि दो काम कैसे करेगी, परंतु हम सबको रोज का अनुभव है, कोई भी काम करते हुए हमारी बुद्धि काम में थोड़ा ही रहती है, काम से बाहर इधर उधर ज्यादा भटकती है। जितनी बुद्धि हमें काम में लगानी आवश्यक है उतनी लगाने के बाद हम अपनी बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। योग को हम कई स्वरूपों में बांट लें। एक बहुत अच्छा महावाक्य हमें याद रखना है, अव्यक्त मुरली का महावाक्य है, परमात्मा में है परम बल, यदि तुम उसकी याद में रह कर कर्म करो तो तुम्हारे हर कर्म में परम बल भी साथ रहेगा और इससे हमारी कार्य की शक्ति बढ़ जाएगी, हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए कुछ सरल से शब्द, कुछ सरल से महावाक्य भी हम याद रख लिया करें, बाबा मेरे साथ है। छोटा सा महावाक्य है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, भगवान मेरे साथ है। और शब्द सुन लें आप, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। और कुछ शब्द सुन लें, परमात्म शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। अगर कर्म के समय पूरा समय भी ये याद न रहे तो कर्म प्रारंभ करने के समय कुछ अच्छी स्मृतियों से प्रारंभ किया जाए। दूसरी बात, स्वमान की स्थिति, शरीरीपन का अभ्यास, कुछ श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ हम कर्म प्रारंभ करें तो कर्मों में दिव्यता आएगी, कर्म हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे और हम सहज ही योग युक्त हो जाएंगे। बाबा की एक बात बहुत हंसी की आपको सुना दे। ब्रह्मा बाबा की, बाबा जब स्नान करते थे तो उन दिनों में ऐसे बाथरूम और नल और बाल्टियां और ये सुंदरता नहीं थी जो आज है। बिल्कुल साधारण बाथरूम, लोटे होते थे पीतल के और वो नीले नीले से, तो लोटों से हम नहाते थे। बाल्टियां लोहों लोहे की होती थी, प्लास्टिक युग अभी आया नहीं था, स्टील युग भी प्रचलित नहीं हुआ था। तो बाबा जब नहाते थे ना तो अपना अनुभव सुनाते थे कि मैं आनंदित हो जाता हूँ किसी ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। शिव कहता है ना, शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। आज तक मंदिरों में शिवलिंग पर लोटी चढ़ाई, अब चेतन शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। आनंद हो गया ना नहाने में। हमें भी बाबा सिखाते हैं, तुम भी अभ्यास करो स्नान करते हुए, मैं इस देवी देवी हूँ, अपने मंदिर की धुलाई कर रही हूँ। हमारा भी तो मंदिर है ना, ये अंतर इतना ही है। भक्ति में भक्त हमारे मंदिर की धुलाई करते हैं, और इस समय हमें खुद अपने मंदिर की धुलाई करनी है। ठीक है, सभी ऐसा अभ्यास करेंगे। खाना खाते हुए बाबा ने कई बार हमें ये योग की ड्रिल सिखाई है। भोजन करते हुए भोजन को बाबा पर अर्पित करें, बाबा को स्वीकार कराएं। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं आजकल कर रहा हूं और करा रहा हूं, आप उसका प्रयोग करें जीवन में और बहुत सुंदर अनुभव करें। भोजन खाने से पहले थाली सामने आ जाए, बाबा को याद कर लो, दृष्टि देते हुए भोजन को कम से कम 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमारे नैनों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर भोजन में समा जाएंगे, पवित्रता बढ़ने लगेगी। अब दूध भी पीते हो, दूध पर भी यही अभ्यास करें। दूध को सामने रख लो, दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आप इस प्रैक्टिस को बीमारियों को ठीक करने में भी यूज कर सकते हैं। जिसको डिप्रेशन हुआ हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, माताओं को तो अपने सारे परिवार को भोजन खिलाना है, आपके बच्चे बुरे संग में जा रहे हो, किसी को बहुत क्रोध आता हो, किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई हो, ऐसा भोजन खिलाएं आप। भोजन बनाते हुए ये प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों से ये अभ्यास कराए हैं, एक एक दिन में सुंदर रिजल्ट लोगों को मिल गए। पवित्रता के बारे में एक ही उदाहरण में बताऊं, मुझे कहीं से कुमार का फोन आया कि मेरी पवित्रता बहुत डिस्टर्ब हो गई है, बहुत परेशान हो गया हूँ, लगता है मुझसे ज्ञान छूट जाएगा। मैंने उसे ये दूध की विधि बताई, दो बार दूध पीते हुए ये अभ्यास करो, और 2 दिन के बाद ही उसका फोन आ गया कि मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है। मुझे भी आश्चर्य लगा, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि 2 दिन के अभ्यास से किसी को इतने सुंदर अनुभव हो सकते हैं। इसको हम अपना कर्म योग बना लें, सवेरे उठकर आप थोड़ी थोड़ी आदत बनाएं अपने जीवन में। आप घर से बाहर जा रहे हैं, भाइयों को हमेशा ही रोज ड्यूटी पर जाना है, घर से बाहर निकलते हुए कम से कम 1 मिनट नहीं तो 3-5 मिनट आप बाबा की याद में बैठें, अपने को याद दिलाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मेरे साथ है। तो आपको लगेगा बाबा आपके साथ चला सरिये पर, ये तो सहज है ना। जब आप घर लौटते हैं वापस, नियम बना लें, घर आते ही आपको चाय चाहिए, अब नियम बना लें, घर आते ही पहले बाबा की याद में 3 मिनट बैठना है। ये छोटे छोटे हमारे नियम हमें कर्म योगी बनने में बहुत मदद करेंगे। कुछ चीजों को अपने जीवन का सिद्धांत बना लें हम, ये हमारे सिद्धांत हैं। सवेरे मुरली सुनते हुए घर से सेंटर तक जाते हुए सारा दिन काम करते हुए 8 घंटे आपको काम करना है तो आप एक संकल्प रख लें कि हमें किसी भी स्वमान का अभ्यास 8 बार कर लेना है, हर घंटे में 1 बार। स्वमान से बहुत फायदा होगा, बाहरी वातावरण और व्यक्तियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उन पर जाएगा। इस तरह आप स्वयं विचार कर लें, भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न स्मृतियों को प्रैक्टिस में लाना है। माताओं के लिए और सहज भोजन बन रहा है, इस बीच में याद करो मैं इष्ट देवी हूँ, शिव बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ। अलग अलग कर्म में किसी में जोड़ दो मैं एक महान आत्मा हूँ, किसी कर्म में प्रैक्टिस कर लें मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ, किसी कर्म में प्रैक्टिस कर लें बाबा करण करावनहार मुझसे करा रहा है। अपना नियम स्वयं बनाएंगे, कर्म योग बिल्कुल सहज प्रैक्टिस है। कम से कम 5 चीजों की प्रैक्टिस रोज आप कर्मों से जोड़ दें, कोई भी 5 आप चुन लें, ये मैंने बताई हैं। इसका बहुत सुंदर प्रभाव जीवन पर रहेगा। मैं आप सभी को बाबा की वो बात अवश्य याद दिलाऊंगा जो सभी के जीवन में वर्तमान समय सभी समस्याओं को समाप्त करने का तरीका है। हर बार आ रहा है मुरली में, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों, देखो भगवान ही हमें संबोधित ही इतने महान स्वमान के साथ कर रहे हैं। हर मुरली में आ गया तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप इस महावाक्य को अपने पास लिख के रखें, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। 15 दिसंबर की मुरली में है अभी अभी, सभी के पास समस्याएं हैं और बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी। विनाश काल माना समस्याओं से भरा हुआ काल, ऐसे काल में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति हमें समस्याओं से मुक्त करेगी। और स्वयं प्लान बनाए, जिनको समस्याओं से मुक्त होना है वो रोज कम से कम 10 बार अपने को याद दिलाएं। 1 बार नहीं, मैं 10 बार भी कम बताया है, मेरे अनुसार जो अनुभव हुए हैं सबके कम से कम 25 बार होना चाहिए। थोड़े दिन तक हमें इसकी धुन लगानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है, सभी सुन ले बहने भी ध्यान से, बाबा ने कहा जब से तुमने ये अलौकिक जन्म लिया मैंने जन्मदिन की गिफ्ट दी है तुम्हें सर्व शक्तियों की। जो शक्तियां मेरे पास हैं वो सब तुम्हें दे दी हैं। याद करेंगे सभी, अपने को इस गहरी फीलिंग में ले चले, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। बहुत अच्छी तरह स्वयं को इस गहरी अनुभूति की ओर ले चलें, स्वीकार कराएं स्वयं को। अनुभूति का आधार है स्वीकार कराना, एक है वैसे ही कह देना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, दूसरा है अपने अंतर मन को स्वीकार करा देना। जो शक्तियाँ सर्व शक्तिवान में हैं वो सब उसने मुझे दे दी हैं। बहुत अच्छी फीलिंग होगी। हमसे जो शक्तियों के वाइब्रेशन फैलते हैं, जो फैलेंगे वो सभी निगेटिविटी को, समस्याओं को, माया को स्वतः ही नष्ट करेंगे। रोज इस तरह सभी कर्म योग का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा फरिश्ता बने। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में रहते हुए जिन्होंने उस समय बाबा को देखा, ये बात 68 के आखिरी मास की है, दो तीन मास की। बाबा सवेरे योग कराया करते थे खुद, बाहर आकर हिस्ट्री हॉल में योग होता था, बाहर आकर खड़े होकर सभी को दृष्टि देते थे। और तब हम सुनते थे कि बहुतों ने बाबा को देखा कि बाबा धरती से ऊपर हैं, बाबा का शरीर जैसे बिल्कुल हल्का रुई जैसा लाइट का बना हुआ है, बहुतों ने आंखों से देखा था। तो ऐसा नहीं कि हम केवल शरीर छोड़कर कर्मातीत या फरिश्ता बनते हैं, हम इस धरा पर रहकर जब संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम योगयुक्त हो जाते हैं, जब संसार की सभी इच्छाओं और तृष्णाओं से हम ऊपर चले जाते हैं, वो हमारी फरिश्ता स्वरूप स्थिति है। धरती से ऊपर हो गए हम, इसके लिए भी हमें बहुत अच्छी साधनाएं करनी है। मैं एक बात पर सोचा करता हूँ, जब भाई बहने भी इस बात का उत्तर देते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका कोई किसी से रिश्ता नहीं, और ये बात जब सब सुनते हैं तो सबको लगता है ये काम अपने बस का नहीं, ठीक है या नहीं? किसी से रिश्ता नहीं, यहाँ तो हजारों से रिश्ते बने हुए हैं संसार में, केवल एक से रिश्ता, बाकी से कोई रिश्ता नहीं। तो सब ये संकल्प ही छोड़ देते हैं कि अपने वश का फरिश्ता बनना नहीं है, छोड़ो ये झंझट को, ये टेंशन भी क्यों पाली के फरिश्ता बनना है। लेकिन इसको बहुत सहज भाव से देखना है। सबसे पहली चीज, अपने मन के बोझ बाबा को देकर, अपने मन के बोझ ज्ञान बल से हल्के करके हमें इस संसार में हल्के होकर रहना है। इस संसार में कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, हंसी की बात सुना देता हूँ, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, भाई लोग ऐसे रहते हैं जैसे सारे संसार को चलाने का बोझ उनके ही सिर पर हो। जो सारे संसार को चलाने वाला है वो परम आनंद में स्थित ऊपर, और जिनको अपने को भी चलाना नहीं आता वो बोझ लिए घूम रहे हैं, सोचने की बात है। हम ज्ञान का प्रयोग करें, ज्ञान का बल चाहिए इसमें, आप विश्वास चाहिए बहुत ज्यादा, अपनी शक्तियों में विश्वास चाहिए, जिससे हम हल्के रह सकें। केवल बोझ बाबा को देकर ही हल्के नहीं रहा जाता, प्रैक्टिकल यही है, क्योंकि बोझ देते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बोझ देना, समर्पित भाव रखना, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने मैं और मेरेपन की जड़ों को काटा हो। ये जड़ें बहुत गहरी उतर चुकी हैं, इन जड़ों को पहचानना भी बहुत कठिन हो रहा है, मैं और मेरा। जब तक इन जड़ों को पहचान कर हम समाप्त नहीं करते, समर्पित भाव नहीं आता, हम बोझ देकर हल्के नहीं हो पाते। सब यही कहते हैं बोझ तो दिए, तो कुछ हुआ तो नहीं, बाबा ने बोझ तो दिए नहीं, बाबा ने तो कह दिया है मैं तो आया ही हूँ तुम्हारे बोझ लेने, इस देने में कठिनाई क्या है, इसी जन की पहली मुरली थी। लेकिन देने के लिए मैं और मेरेपन से मुक्त होने का लंबे काल का अभ्यास होगा, और मेरा बाबा है, बाबा से बहुत ज्यादा अपनापन हो गया हो, अब वो हमारे लिए भगवान नहीं रहा, हमारा हो गया है, हमारा, ये हमारापन, ये अपनापन, जिसमें बिल्कुल निर्मल प्यार समाया होता है, अपनत्व समाया हो, अधिकार समाया हो, ऐसी मनोस्थिति के बाद ही कोई अपने बोझ बाबा को अर्पित कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे सभी तो परिश्रम बनना है। पहले हमें ज्ञान बल से स्वयं को हल्का रखना सीखना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर योग बल से देखो बाबा ने जैसे किया, योग की सूक्ष्म थ्योरी, इसकी सूक्ष्म गति जो आत्माएं जानती जा रही हैं, वो इन बातों को अनुभव करती हैं। अभी दो तीन दिन पहले ही मुंबई में आया, मैं जब से आया तुम्हें योग सिखाना प्रारंभ किया और जब योग सिखाकर पूरा कर दूंगा तब मैं वापस लौट जाऊंगा। कितना गहन है ये राजयोग, अभी हम सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हमने परफेक्टली सीख लिया है। जिस दिन हम संपूर्ण रूप से सीख जाएंगे वही हमारी संपूर्णता भी होगी। देखिए बाबा को भी तो स्थूल शरीर था, शिव बाबा से शक्तियों की पवित्रता की किरणें लेते लेते बाबा का शरीर जो स्थूल तत्वों का बना हुआ है वो अपने तत्वों के स्थूलता को छोड़कर लाइट हो गया था। योग में इतनी शक्ति है, योग के वाइब्रेशन इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, जो तत्वों की स्थूलता को भी सूक्ष्मता में बदलने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। बाबा ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से इतनी अधिक एनर्जी ली कि उसके तत्वों के बने हुए इस स्थूल शरीर के स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप लेते थे। आप सब जानते हैं कि छोटी सी बात पर जो पढ़े लिखे हैं वो केवल विचार करेंगे। बर्फ को पानी में बदल दिया जाता है गर्मी देकर, पानी को भाप में, फिर से भाप को पानी में, पानी को बर्फ में, मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। बर्फ मैटर था, उसको भाप एनर्जी में बदल दिया गया। इसी तरह एनर्जी को भी मैटर में बदला जा सकता है। विज्ञान अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। योग की शक्ति स्थूलता को सूक्ष्म में और सूक्ष्म को पूरे स्थूलता में बदलने में सक्षम है। ये बहुत सूक्ष्म गति है। इसको समझने के लिए भी हमें लंबे काल के योग अभ्यास की आवश्यकता है। तो हम बाबा से पवित्रता की और शक्तियों की किरणें लेते हुए अपने शरीर की स्थूलता को मन और शरीर के अंग अंग में फैले हुए विकारों को, विकार केवल आत्मा में नहीं है, कर्मेंद्रियों में भी विकार समाये होते हैं, अंग अंग को हमें शीतल करना है। अंग अंग विकारों की अग्नि से तप रहे हैं, ये बाबा के महावाक्य हैं। हम बाबा से शिव बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर अंग अंग को शीतल करेंगे धीरे धीरे। जो आज के संदेश में थी बहुत अच्छी बात कि कुछ बच्चे कर्मेंद्रियां जीत प्रकृति जीत बनते जा रहे हैं और जल्दी वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन्हें देखकर सभी चीज पुरुषार्थ करेंगे। ये भविष्य का एक सुंदर सा नक्शा आज के संदेश में खींच दिया बाबा ने। कल हम सभी के बीच में होना रहा है जिससे मिलने के लिए हम सभी युगों से लालायित थे, और कल मैं आप सभी को कहूंगा जो मैं सोचा करता था जब शुरू से मैंने अव्यक्त बाबा को देखा पहले दिन से ही, कि हम बाबा को इतना देख लें, जी भर के देख लें कि हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए। देखना चाहते थे ना हम उसको। हमें ये भी बता दिया गया था कि वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब तो हम आंखों से ही देखते हैं ना उसको। हमारे दो नैनों के साथ हमारा तीसरा दिव्य नेत्र भी मिल जाता है, और हम उसको जी भर के देख सकते हैं। कल सभी उसको जी भर के देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक अभ्यास बता देता हूँ, एक दो अभ्यास बता देता हूँ। अब सभी आप करेंगे और कल के जीवन को अपने जीवन की यादगार बनाएंगे, कल के दिन को जीवन की यादगार सभी करेंगे अभ्यास। एक तो कल मौन रखना है, कई बार आज आपको बता दिया गया है। मौन रखना वैसे सहज नहीं होता, जिनको बोलने की आदत है वो मौन रखने पर बोर हो जाते हैं, तो जब खाना खा लेते हैं पेट भर जाता है तो बोलने लगते हैं। इसलिए दोपहर तक तो मौन चलता है, दोपहर के बाद खत्म हो जाता है। कईयों का सवेरे सवेरे चलता है, नाश्ते से पेट भरा, बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बोलने की ताकत आ जाती है ना पेट भरने से। इसलिए लोग व्रत रखते थे और फिर मौन रखते थे ताकि ताकत ही नहीं रहे जो ज्यादा बोला जाए। तो कल हम भी चाहेंगे और आप भी यही चाहें कि शांति वन को एक बार कम से कम शांति धाम बना दिया जाए। बोलो कौन कौन साथ देंगे इसमें? बहुत अच्छा, क्योंकि शांति धाम में रहने वाला शांति धाम में ही आ जाए तो उसे भी लगे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, अपने ही घर में हूँ। एक बहुत अच्छा अभ्यास, अभी एक विजन बना लें आप कि अकेला मैं हूँ, मैं हूँ केवल, अकेली मैं हूँ और सामने चमकती हुई दिव्य ज्योति किसी स्टेज पर, यही मेरे पीछे आके बैठेंगे बाबा। देखने लगो कमरे में भी यही देखना, केवल मैं और सामने चमकती हुई परम ज्योति, दिव्य ज्योति, महाज्योति। अभ्यास करके देखेंगे सभी बहुत बहुत, क्योंकि योगी तो वही बन सकते हैं जो संगठन में रहते, परिवारों में रहते भी अकेले हो जाएं, कम से कम कुछ समय के लिए तो अकेले ही हो जाएं। समझ आई अभ्यास? केवल मैं और बस महाज्योति ही दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कल जब आप सवेरे यहाँ खोलें तो ये जो बाबा के आने का दिन होता है, क्योंकि हम सब उसका आह्वान करते हैं, तो हमारा आह्वान, हमारे दिल की आवाज, हमारा प्यार भरा निमंत्रण उसके पास पहुंचता रहता है और उधर से रिटर्न होता रहता है। तो सवेरे से ही बाबा बहुत बहुत प्यार भरी दृष्टि हम सब पर डालते हैं। जैसे ही आप कल आंख खोलें, आप ऊपर को देखना, जन सूर्य अपनी किरणें डाल रहा है। बहुत रस लेंगे इसका सवेरे से ही, क्योंकि सत्य को हमें पहचान लेना है। एक साथ कई लाख बाबा के बच्चे कल आंख खुलते ही बाबा की ओर देखेंगे, आज बाबा आने वाला है। आप भी जब बाहर होते हैं अपने अपने घर में, तो बाबा का दिन आते ही सबके मन में एक दूसरा स्वरूप हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, बाबा आ रहा है। और जब परम सत्ता इस धरती पर उतरती है तो उसके वाइब्रेशंस सारे संसार में फैल जाते हैं। ये भी सभी को ख्याल रहे, वो बैठे यहाँ हैं आकर, लेकिन उसकी किरणें सारे संसार में फैलने लगती हैं। उस समय जो उस पर एकाग्र करते हैं, वो चाहे जहाँ भी बैठे हों संसार में, उनको उसकी उपस्थिति का आभास होने लगता है। तो कल सवेरे से ही ज्ञान सूर्य हम पर किरणें डालेंगे, हमारे प्यार का रेस्पॉन्स देंगे, सवेरे से ही सभी अनुभूति में स्थित हो जाएंगे। आंख खुलते ही, यहाँ आकर नहीं, जैसे ही आंख खुले तब से ही ज्ञान सूर्य अपनी किरणें डाल रहा है, प्यार भरी रूढ़ियां करेंगे। अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बाबा को बांध कर नीचे उतारेंगे। कल हर एक अपना प्यार अर्पित करें बाबा को। सवेरे से ही जन्म जन्म भक्ति में हम सब ने जितना प्यार किया है उस प्यार के सागर को कल सवेरे उस संपूर्ण प्यार को इकट्ठा कर लें और अर्पित करें वो प्यार बाबा पर। अर्पित करने का अर्थ है प्यार से उससे बातें करें। शुरू करेंगे इस तरह, हे प्राणेश्वर हम तुम्हें जन्म जन्म कितना याद करके आए, तुम हमारी आवाज सुनकर हमारी भक्ति का फल देने के लिए हमारे सम्मुख आ गए और फिर से अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। प्यार देंगे, प्यार अर्पित करेंगे इस तरह बाबा को। एक प्रैक्टिस उसके बाद शुरू करेंगे और जिसको चालू रखेंगे बाबा के आने तक, ये बहुत सुंदर योग हो जाएगा। संकल्प करेंगे मैं इस सृष्टि पर सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। इस संकल्प के बाद अभी करेंगे सब, ऊपर को देखो परम धाम में महाज्योति सर्वशक्तिवान अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं और नीचे और आ जाते हैं मेरे सिर के ऊपर, छत्र बन गए। इस छत्र के नीचे कुछ देर तक बैठ जाएंगे। ये अभ्यास बार बार करते रहें। कल सवेरे से योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। बाबा ऊपर से चलते हैं, नीचे आते हैं, मेरे सिर के ऊपर छत्र बन जाते हैं। कुछ देर छत्र रहते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ज्ञान सूर्य नीचे आते हैं मेरी आंखों के सम्मुख। बिल्कुल यहाँ देखेंगे बाबा को और उसकी किरणें पड़ रही हैं चेहरे पर, आत्मा में भी समा रही हैं, संपूर्ण चेहरे पर पड़ रही हैं। संकल्प करेंगे मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर देखेंगे वो आ रहे हैं तो सवेरे से ही परमात्मा मिलन प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह जितनी बार आप ये दोनों अभ्यास करेंगे, मैं अकेले, सामने शिव बाबा और बाबा आ रहे हैं, अपना ही सारा दिन चित्त शांत रहेगा। सभी को कल के दिन विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते। पुण्य आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को ये दिन मिलता है। इस दिन का पूरा फायदा उठाना है। बातें तो बाद में हो जाएंगी, बहुत रोज बातें करने का मौका है। कल हम अपने से बातें करते रहेंगे और पहले से ही कोई संकल्प चुन के रखेंगे कि आज बाबा जब आएंगे हम ये चीज बाबा को दान करेंगे, अर्पित कर देंगे। कल कोई बुराई अपनी बाबा को और बाबा से उसके रिटर्न में वरदान ले लेंगे तो हम सभी सच्ची लगन के साथ कल के दिन को ऐसा दिन बनाएंगे जो ये चारों युगों में हमारे अंतर मन में छपा रहे और जब भक्ति काल आए तब हम पुनः सूक्ष्म रूप से इस आनंद के अनुभव में समय व्यतीत किया करें। ओम शांति। अभी हम फिर से उसी फीलिंग में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, परमात्म शक्तियां मेरे पास, फरमा दें अपने अंतर मन में संकल्प, ऊपर से सर्वशक्तिवान की आठों शक्तियां मुझ में समा रही हैं।